नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक दोपहर में लगभग 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 76,676 पर और निफ्टी 112 अंक कम होकर 23,944 पर था। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन जुस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।